ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 19 श्लोक संख्या 14 से 18। अभी 18वां श्लोक पढ़ते हैं, कृपया दोहराइए। कृतम एक तरेन अपि दंपतयो उभयो अपि पत्यनां कुर्यात् अनहार्याम् पतियेतत्समाहित। कृतम एक तरेन अपि दंपतयो उभयो अपि पत्यनां कुर्यात् अनहार्याम् पतियेतत्समाहित। कृतम एक तरेन अपि दंपतयो उभयो अपि पत्न्यां कुर्यात् अनहार्याम् पतिः एतत् समाहित। कृतम किया गया, एक तरेन एक के द्वारा, अपि भी दंपतयो पति तथा पत्नी का, उभयो दोनों, अपि तो भी, पत्नयाम जब पत्नी, कुर्यात उसे करना चाहिए, वह करे अनहार्याम अक्षम पति पति एतत् यह समाहित मनोयोग से। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की, कृपया दोहराइए। पति पत्नी दोनों में से कोई एक इस भक्ति को कर सकता है, उनके मधुर संबंधों के कारण दोनों को फल मिलता है। अतः यदि पत्नी इस व्रत को करने में असमर्थ हो तो पति सावधानी से इसे करे, इससे उसकी आज्ञाकारिणी पत्नी को भी इसका फल मिलेगा। इसका तात्पर्य पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। आज्ञाकारिणी पत्नी तथा एक निष्ठ पति के बीच मधुर संबंध रहता है, तब यदि पत्नी निर्बल होने के कारण पति के साथ भक्ति नहीं कर सकती तो भी उसके पति के कार्यों से उसका आधा हिस्सा रहता है। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 14। इसका अनुवाद पढ़ता हूं। आप दोनों ही तीनों लोकों के अधिष्ठाता एवं वरदानी हैं, अतः है उत्तम श्लोक भगवान, आपके अनुग्रह से मेरी अभिलाषाएं पूर्ण हों। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार श्रीनिवास भगवान विष्णु की पूजा ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी के समेत उपयुक्त विधि से स्तुतियों द्वारा की जाए, फिर पूजा की सारी सामग्री हटाकर उसका आचमन करावें और फिर से पूजा करें। तत्पश्चात अत्यंत भक्ति एवं विनम्रता पूर्वक भगवान तथा लक्ष्मी की स्तुति करें, तब यज्ञावशेष को सोंकर विष्णु तथा लक्ष्मी की पुनः पूजा करें। पत्नी अपने पति को परमेश्वर का प्रतिनिधि मानकर उसे प्रसाद देकर शुद्ध भक्ति से उसकी पूजा करे, और पति भी अपनी पत्नी से परम प्रमुदित होकर अपने परिवार के कार्यों को स्वयं करे। पति पत्नी दोनों में से कोई एक इस भक्ति को कर सकता है, उनके मधुर संबंधों के कारण दोनों को फल मिलता है। अतः यदि पत्नी इस व्रत को करने में असमर्थ हो तो पति सावधानी से इसे करे, इससे उसकी आज्ञाकारिणी पत्नी को भी इसका फल मिलेगा। क्या चर्चा चल रही है? व्हाट इज गोइंग ऑन? टॉपिक जो है क्या चल रहा है? पुंस वन व्रत कैसे करना चाहिए, किस लिए इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, वाई संदर्भ क्या है, प्रकरण क्या है? दिति ने अपने पति कश्यप मुनि से प्रार्थना करी है कि उसे एक पुत्र की प्राप्ति कराएं और वो पुत्र जो है ऐसा हो जो इंद्र को मारने वाला हो, जो इंद्र को मार सके। अब कश्यप मुनि जो है वो दिति को ऐसा व्रत बता रहे हैं जिससे दिति जो है वो पुत्र प्राप्त करके इंद्र को मारने की प्रार्थना करे या पुत्र प्राप्त करके इंद्र की सहायता करने की प्रार्थना करे। व्रत के रास्ते व्रत किस लिए कराया जा रहा है? इतना टफ आसान नहीं है ये, इट्स नॉट ए इजी जॉब। तो बैकग्राउंड में क्या है, मन में क्या बात समा रही है कश्यप मुनि के? कि दिति जो है भगवान की भक्त बन जाए। टेक्निकल पॉइंट ये है कि इस वक्त जो है भगवान के अगेंस्ट जाने का प्रयास कर रही है। इंद्र को इंद्र की स्थिति में किसने बिठाया है? अपने आप जाके बैठ गया, कुर्सी खाली थी, चलो जी मैं आ रहा हूं, ऐसा था क्या? वहां सिंहासन खाली पड़ा था, घूमते फिरते एक आदमी आया, बोला मैं इंद्र हूं, और जाके इंद्र के सिंहासन में बैठ गया। इंद्र को वो सिंहासन किसने दिया है? Who has given it? अपॉइंटमेंट जो है किसने करी है? वो कर्मों का फल जो है अल्टीमेटली कौन प्रदान करता है? भगवान यही कह रहे हैं ना, तेरा कर्म के फल पर अधिकार नहीं है। मतलब ये है कि फल तो देने वाला मैं हूं। तो इंद्र को जो है वो जो इंद्र के सिंहासन में बैठने का पुण्य कर्मों के अनुसार फल प्राप्त हुआ है वो भगवान ने दिया है। और दिति जो है उस भगवान के किए हुए कार्य में व्यवधान डालना चाहती है, इंद्र को मारने के लिए पुत्र प्राप्ति का प्रयास करना चाहती है। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि हाँ क्या उभर के आ रहा है कि कश्यप मुनि अपनी पत्नी को जो है इस तरह का व्रत देना चाहते हैं कि उस व्रत को करने के बाद उसका मन पलट जाए और भगवान की भक्त बन जाए। परंतु यहां बीच में एक समस्या आ रही है कि इंद्र भी तो कम स्मार्ट नहीं है, वो तो बहुत तेज है, तो क्या करेगा वो? वो क्या कर रहा है, उसकी प्लानिंग क्या है इंद्र की? व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू? क्या कर रहा है वो? वो दिति के व्रत धारण में, व्रत करने में छिद्र ढूंढ रहा है कि किसी तरीके से अगर ये व्रत को पालन करने में मिस्टेक करती है, गलती करती है, तो मैं इसके गर्भ में प्रवेश करके और जो गर्भ है उसकी हत्या कर दूंगा। तो वो उसके आसपास है, नियर बाय, उसने जो है वो स्थान को छोड़ा नहीं है, क्योंकि उसे पता है अगर कहीं को ऐसा पुत्र प्राप्त हो गया तो मेरा तो मरना निश्चित है। परंतु उससे बचने का उपाय क्या है कि मैं उस भ्रूण की हत्या कर दूं। तो यहां पर जो है जो चर्चा चल रही है कि व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। अब उस व्रत के पालन के अंदर जो है यह स्तुति चल रही है कि आप दोनों ही लोक के, आप दोनों ही तीनों लोक के अधिष्ठाता एवं वरदानी हैं, अतः है उत्तम श्लोक, भगवान आपके अनुग्रह से मेरी अभिलाषाएं पूर्ण हो। शब्द इस्तेमाल हुए हैं यथा युवाम त्रिलोकस्य वरदो परमेष्टिनो, वर देने वाले वरदानी, आप परम शासक हैं, आप वर देने वाले वरदानी हैं। अब जो वरदान देने वाले हैं उससे वरदान मांगा जा रहा है। क्या वरदान मांगा जा रहा है? कि मेरी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हों। महाआशीष, बड़ी बड़ी अभिलाषाएं, मतलब मैंने जो एक बहुत बड़ी अभिलाषा का इच्छा करी कि मेरी ये अभिलाषा पूर्ण होनी चाहिए, मेरी ये डिज़ायर पूर्ण होनी चाहिए, तो अब जो है मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी ये अभिलाषा पूर्ण हो जानी चाहिए। और साथ में जो है स्तुति में कहा जा रहा है कि आप तीनों लोक के अधिष्ठाता हैं, पालन करने वाले हैं, स्वामी हैं। तीनों लोक, कौन कौन से तीनों लोक की चर्चा हो रही है? तीन लोक है ना, तीन लोक कौन कौन से हैं? तीन लोक तो होने चाहिए ना। त्रिलोकी, भगवान तीनों लोक के स्वामी हैं, तो किस किस लोक की चर्चा हो रही है? जब हम कहते हैं कि भगवान जो है तीनों लोक के स्वामी हैं, या वामन भगवान ने दो लोक नाप लिए और एक तीनों लोक दो पग में नाप लिए और एक पग जो है आगे मैं कहाँ रखूँ, तो बली महाराज ने कहा मेरे सर पे रख दीजिए। तो तीनों लोक जो नापे जा रहे हैं, तो तीनों लोक पे कौन कौन से लोक आते हैं? स्वर्ग लोक 14 तो भुवन हो गए ना, तो 14 लोक हो गए वो तो। ब्रह्मा जी का लोक जो है तीनों लोक में आता है क्या? और पाताल लोक आता है? सो तीनों लोक की गिनती कैसे होती है? तो 14 लोक हो गए ना, इनको तीन कैसे किया गया? 14 के तीन कैसे बनाए? बड़ी टेक्निकल पॉइंट है ये। पृथ्वी लोक, जो भूलोक जिसमें हम रह रहे हैं, इसको एक लोक माना गया, ऊपर के एक और नीचे के एक, उनको सबको ज्वाइंट करके एक माना गया, तो तीनों लोक सब नप गया एक बार में। तो यहां पे कह रहे हैं, इसके बाद सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस प्रकार श्रीनिवास भगवान विष्णु की पूजा ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी के समेत उपयुक्त विधि से स्तुतियों के द्वारा की जाए। अब यहां प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग जो है लक्ष्मी की पूजा करते हैं परंतु साथ में विष्णु पूजा नहीं करते। दिवाली में किसकी पूजा करते हैं लोग? तो विष्णु कहाँ है? विष्णु कहाँ है? पूजा हो रही है लक्ष्मी और गणेश जी की, स्तुति हो रही है, ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, महिमा मंडन हो रहा है, प्रार्थनाएं हो रही हैं, किसके प्रति हो रही हैं? विष्णु जी के प्रति क्यों नहीं करते? कारण कह रहे हैं पैसे नहीं देंगे। लक्ष्मी जी ऐश्वर्य की देवी है, द्वारका के अंदर भगवान सोते हुए भी जो है गोपी गोपी राधे राधे करते थे, जागृत अवस्था में तो करते ही थे, सोते हुए भी गोपी गोपी राधे राधे करते थे। तो भगवान की जितनी महिषियां हैं सब परेशान, खासतौर पे लक्ष्मी जी परेशान, क्योंकि रुक्मिणी जी हैं मुख्य हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये गोपी गोपी राधे राधे करते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो उन्हें निष्कर्ष रूप में कारण मिला कि भगवान जो है उनसे बहुत प्रेम करते हैं। रहते तो द्वारका में है पर स्मृति किसकी है? राधा जी की और गोपियों की। क्यों है? कि उनसे भगवान का प्रेम असीम है, कोई लिमिट नहीं है। गोपी गोपी राधे राधे करने के पीछे कारण यह है कि भगवान उस महारास का स्मरण करते हैं जो महारास उन्होंने उनके साथ किया। आयु थी 8 वर्ष। तो रुक्मिणी जी कहती है कि हम भी उस रास में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, आप जो है उस रास में हमारा भी पार्टिसिपेशन कराइए। तो भगवान ने अस्वीकार कर दिया, सॉरी तुम्हारा पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले कि गोपियों में और राधा जी में माधुर्य रस है, माधुर्य के द्वारा जो है वो मेरे को प्राप्त करती है। दुर्जय ग्रह श्रृंखलाएं छोड़कर मेरी बांसुरी की धुन पर मेरे पास चली आती थी, छोटी हो या बड़ी हो, विवाहित हो या अविवाहित हो, वो मेरे पास चली आती थी, मेरे साथ जो है नृत्य में रास में पार्टिसिपेट करती थी। उन्होंने अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर दिया था, परंतु तुम ऐश्वर्य की स्वामिनी हो, तुम ऐश्वर्य भाव में हो। उनका भाव त्याग का था, सेक्रीफाइस का था, माधुर्य का था, तुम्हारा भाव जो है ऐश्वर्य का है। तो तुम ऐश्वर्य छोड़ नहीं पाओगी, गोपी गर्भ से जन्म ले नहीं पाओगी, इसलिए तुम जो है मेरे रास में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लक्ष्मी जी ने बड़ी तपस्या करी, बहुत रिक्वेस्ट किया, अल्टीमेटली भगवान ने जब रिफ्यूज कर दिया तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे एक वर तो दीजिए कि हमेशा अपने अंग संग रहने का वरदान दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, तुम श्री वत्स चिन्ह के रूप में मेरी छाती के ऊपर एक सुनहरे बालों के गुच्छे के रूप में, एक रेखा के रूप में वहां पर प्रकट रहोगी, तुम्हारा मेरा संग कभी नहीं छूटेगा। तो वो ऐश्वर्य की देवी जो भगवान के वक्ष पर विराजमान है, भगवान की प्रियतम है, प्रिय बहुत प्रिय है, द्वारका लीला के अंदर सब लीलाओं के अंदर लक्ष्मी जी जो है रुक्मिणी के रूप में बहुत ही प्रिय है। और हम जो है क्या करते हैं कि हम उनके प्रियतम को छोड़कर दूसरे की पूजा करते हैं उनके साथ। बुरा नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, करिए, देवता है, पूजनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है, सब कुछ है। परंतु प्रश्न ये है कि हम लोग जो है जो हमारे यहाँ पे रीति रिवाज बन गया है कि हम लोग जो है साथ में भगवान विष्णु की पूजा क्यों नहीं करते, किस लिए नहीं करते? कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ तो उन्होंने सोचा होगा ना कि यहाँ पर जो है इसके सिवाय आप जो है गणेश जी को बिठा दीजिए। उसमें एक कारण ये है कि एक बालक जो है अपने पैसे कुछ लेता है और बाजार जाता है, दुकानदार से कहता है कि मुझे थोड़ा सा सखिया चाहिए, संखिया मतलब जहर। तो दुकानदार जो है उससे पूछता नहीं कि तूने क्या करना है, क्या करेगा, क्या है, बोला क्या 10 रुपये तोला है लाओ, 100 पैसे दिए और संखिया लेके आ गया, जो मर्जी करे खाए या किसी को खिलाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पिता के पास गया, पिताजी से कहता है पिताजी मुझे 10 रुपये चाहिए। बोले क्या करो? बस संखिया लेके आऊँगा। बोले क्या करें? बोले खाऊंगा। तो पिता उसको 10 रुपये देगा कि झापड़ देगा? क्या करेगा? जहर खरीदने के लिए उसको पैसे देगा कि झापड़ मारेगा? नहीं देगा पैसे, ही विल रिफ्यूज। तो हम जो है जब दीपावली पे पूजन करते हैं तो किस लिए करते हैं? सुख संपत्ति धारा, हमें तो यही चाहिए ना। दीपावली पे पूजन का अर्थ क्या है कि भाई हमारा जो है नववर्ष आरंभ हो रहा है। बिजनेस वाले क्या है, भाइयों पे किताबों पे गणेश जी स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं कि हमारी जो है भैया जो है इनमें जो लिखा जाए वो धन से भरपूर हो। अब उन्हें पता है कि अगर हमने विष्णु की पूजा करी तो जो चीज जो है हमारे लिए मौज मेले की होगी, भगवान देने वाले हैं नहीं, वो तो परमपिता है। वो हमारा जो है जो जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जो हमारे लिए श्रेयस्कर है, जो हमारे लिए उचित है, वही करेंगे। तो हमारी डिजायर फुलफिल होने वाली नहीं है। हम जब उनसे मांगेंगे तो हम किस लेवल पे हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम जना पर्युपासते। हम आरती हो सकते हैं, जिज्ञासु हो सकते हैं, अर्थार्थी हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, उनसे कुछ ना कुछ मांगने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें ये मिले, हमें ये मिले, हमें ये मिले, हमें ये मिले, तो वो तो देने वाले हैं नहीं। इसलिए जो है भगवान विष्णु को साइड में करते हैं। ठीक है, अब आपकी जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? वो ऐसी देवता जो जल्दी से प्रसन्न हो जाए और हमारी इच्छा की पूर्ति कर दे। तो लक्ष्मी जी के साथ देवता जी को बिठा दिया गया कि आप हमारी इच्छाओं की पूर्ति करें, ताकि हम जो मांगे हमें मिले। तो यहां पर जा रहा है कि पूजा की ऐश्वर्य देवी माता लक्ष्मी जी के समेत उपयुक्त विधि से स्तुतियां करी जाएं। किसको बिठाना है साथ में? भगवान विष्णु को। अब एक समस्या आती है, कुछ लोग जो है लक्ष्मी का उपभोग करना चाहते हैं, उसको एंजॉय करना चाहते हैं, परंतु एंजॉयमेंट के अंदर जो है भाव गलत है और विष्णु जी को इग्नोर कर देते हैं, तो उनकी क्या गति होती है? व्हाट डू दे गेट? रावण ने क्या किया? रावण ने सीता जी को उठा के ले गया और भगवान को मारना चाहता। इनसे तो दुश्मनी है, उनकी तो पत्नी उठा के लाया हूं मैं। तो अल्टीमेटली जब लक्ष्मी का भोग करना चाहा और विष्णु जी को इग्नोर कर दिया, उनके पति को इग्नोर कर दिया, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आया? मृत्यु। मतलब हम भी अगर जो है इसी तरह का कोई कार्य करना चाहते हैं कि लक्ष्मी जी से वरदान पाना चाहते हैं, उसका भोग करना चाहते हैं, धन आ जाए, खूब सुख संपत्ति आ जाए, खूब पैसा आ जाए, वगैरह वगैरह वगैरह, तो अल्टीमेट जो है उसका रिजल्ट क्या आने वाला है? हमारा जीवन मृत्यु से भी बदतर हो जाएगा। अगर आप ध्यानपूर्वक सुने, देखें अपने आसपास, जो भक्ति के अंदर है, जो भक्त यहां बैठे हुए हैं, ठीक है, पैसा नहीं है कोई बात नहीं, ब्रह्मचारी है इन्हें कोई दक्षिणा नहीं मिलती है, कोई पैसा नहीं मिलता है, कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, सारा दिन करताल बजाते हैं, मृदंग पीटते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। क्यों कर रहे हो भाई? बढ़िया बिल्डिंग हो, बढ़िया कार हो, बढ़िया घर हो, बढ़िया सी पत्नी हो, बढ़िया सा सारा साजो सामान हो, वो छोड़ के यहाँ जो है पड़े हुए हो, किस लिए पड़े हुए हो? IIT से ग्रेजुएशन किया है और मंदिर में बैठे भगवे कपड़े पहन के, किस लिए? अगर आनंद नहीं आ रहा होगा तो यहां नहीं बैठेंगे। अगर वो आनंद की अनुभूति नहीं होगी, एक असीम आनंद जिस आनंद को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उस आनंद को शब्दों में नहीं माना जा सकता। मुरली कृष्ण प्रभु से पूछा, प्रभु जी कितना आनंद आ रहा है? बहुत। कितना? बहुत। कितना? बहुत। कितना? बहुत। इतना इतना इतना। अरे हमारे जैसे बन के देख लो, पता लग जाएगा। किसी ने पूछा, किसी दोस्त ने पूछा कि भाई तुम्हें यहां इतना आनंद क्यों आ रहा? बोले रसगुल्ला कैसा है? बोले मीठा है। बोला कितना मीठा है? बोला बहुत मीठा है। कितना मीठा? बहुत मीठा, बहुत मीठा, बहुत कितना मीठा, खा के देख ले। अगर इस सेवा के अंदर, अगर इस पोजीशन के अंदर, अगर इस भाव के अंदर आनंद आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप जीवन को बढ़िया तरीके से जी रहे हैं। पर जो व्यक्ति बाहर जो है खूब भौतिक आनंद ले रहा है, बिल्डिंगें हैं, कारें हैं, उनसे भगवान का नाम पूछो तो भगवान का नाम नहीं पता उन्हें। वो मंदिर में दर्शन करने नहीं आते। कभी उनसे पूछो ना, वहां गए हैं, आज देखा है, जैसे कि लाल किला देखने गए हो। मंदिर को दर्शन करने, पूजा अर्चना सेवा करने, भगवान के यहां सेवा करने, दर्शन करने के लिए नहीं जाते। उनसे अगर पूछा जाए कि आप कहीं वहां मंदिर में गए थे, बोला हाँ देखा है, कभी फिर पूछ लो, अच्छा भाई मैं वृंदावन जा रहा हूँ चले, नहीं नहीं वो तो सारे मंदिर देखे हुए हैं, वहां कोई फायदा नहीं जाने का, किसी और जगह चलते हैं घूमने के लिए। अब भक्त क्या कहता है, अभी उसके कपड़े धुले नहीं है, बाल्टी पड़े हैं, उसको दोपहर में धोने हैं, एक ही जोड़ा पहन रखा है मैला सा, और ऑफर आई कि प्रभु जी वृंदावन चल रहे हैं, मंदिर में सेवा है, दर्शन है, चलोगे? बोला चलोगे, कपड़े तो ले ले, बाल्टी वाली निकाल के साथ ले लेता, वहां चल के धो लेंगे, वहां चल के धो लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। दर्शन के लिए ललायत है, सेवा के लिए ललायत है, भाग के जाना चाहता है। वो कहता है कि मैं देखू, मैंने देख रखा है। यहाँ भक्त कहता है देखने की बात नहीं है, यहाँ क्या है, सेवा की बात है। मुझे वहां जाके भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे, भगवान की सेवा प्राप्त होगी, उसमें जो असीम आनंद मिल रहा है, जो उसमें एक एंजॉयमेंट मिल रहा है, वो जीवनदायिनी है। और जो बाहर का व्यक्ति जो है भगवान को इग्नोर करके, भगवान को भूल के, भगवान के सामने न होके, भगवान की तरफ पीठ करके बैठा हुआ है, संसार की तरफ सुख प्राप्त कर रहा है, वो जीवन उसका मृत्यु से भी बढ़कर है, इज एज गुड एज डेड। वो कहते हैं ना पशुवत जीवन, क्योंकि भगवान से उसका कोई कंसर्न नहीं। अब इसके बाद यहां कहते हैं कि तत्पश्चात अत्यंत भक्ति एवं विनम्रता पूर्वक भगवान तथा लक्ष्मी जी की स्तुति करें, तब यज्ञावशेष को सोंकर विष्णु तथा लक्ष्मी की पुनः पूजा करें। मतलब भगवान की पूजा करनी है तो उसके लिए दो कंडीशंस बताई। नंबर एक, भक्ति पूर्वक अर्थात सेवा प्रेम पूर्वक होनी चाहिए, नॉट अंडर कंपल्शन, प्रेम से, मजबूरी से नहीं। भक्ति का मतलब होता है भगवान की प्रेममयी सेवा। और दूसरा, विनम्रता पूर्वक, चैलेंजिंग स्पिरिट से नहीं। चैलेंज करते हैं कभी भगवान को? आपने किया है, देखा है किसी को चैलेंज करते हुए? भगवान को या किसी भी देवी देवता की अगर कोई व्यक्ति पूजा करता है तो उसकी चैलेंजिंग क्या है, चैलेंज क्या है? ऐसा है कि आपको बढ़िया पति चाहिए ना, हाँ जी चाहिए, तो आप ऐसा करिएगा कि 16 सोमवार को जो है शिव जी को जल चढ़ा दीजिए। बोले अच्छा, अगर ना सेवा स्वीकार हो, ना पति मिले तो मत चढ़ाना, मत जाना इसके बाद। 16 दिन जाना है, मतलब 16 सोमवार जाना है, उसके बाद अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं होती तो आपको नहीं जाना। तो चैलेंज हुआ कि नहीं हुआ? एक बालिका का मेरे पास इंटरनेट के ऊपर मैसेज आया, लुधियाना की रहने वाली थी, उसको कहीं किसी पार्टी में मॉलेस्ट किया, किसी लड़के ने छेड़ दिया। लुधियाना मंदिर में जाती थी तो उसने जो है मेरे को एक मैसेज किया, प्रभु जी ऐसा है कि मैं बहुत दुखी हूँ कि उस लड़के को जिसने मुझे मॉलेस्ट किया था उसे कुछ सजा नहीं मिली, उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिला। तो मैंने जो है आज मंदिर के अंदर खड़े होकर कमिट किया है कि मैं 1000 माला का जप करूंगी। अगर मेरी 1000 माला का जप, एक दिन में नहीं, नॉट इन वन डे, मीन्स टोटल हफ्ता, 10 दिन 15 दिन, जो भी है, महीना 2 महीने, जितने दिन भी लगेंगे, 1000 माला का जप करूंगी, अगर 1000 माला के जप होते होते उसको सजा नहीं मिली तो माला जप नहीं छोड़ दूंगी, उसके बाद नहीं करूंगी, मंदिर में नहीं आऊंगी। ये चैलेंज है कि नहीं? या तो मेरी कंडीशन पूरी करो, नहीं तो मैं आपको भूल जाऊंगी, नमस्ते, दूर दूर से यहां जी, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं है, कोई आपसे लेना देना नहीं है। तो यहां क्या चर्चा आ रही है? विनम्रता पूर्वक। विनम्रता की परिभाषा क्या है? आप हम्बल हैं। हम्बल का मतलब क्या है? कि अगर जो है कोई आप पर कष्टपूर्ण स्थिति भी आती है तो आप अपनी विनम्रता नहीं छोड़ते, आप अपना व्यवहार नहीं छोड़ते। यू हैव टू बी वेरी फिक्स्ड इन योर आइडियाज। एक महात्मा जी जो है गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, एक बिच्छू बगल में तैरता हुआ जा रहा है, मर रहा है, उन्होंने उठाया हाथ पे और किनारे पे रखने की कोशिश करी, बिच्छू ने काटा, फिर गिर गया, फिर उठाया, फिर काटा, फिर गिर गया, फिर उठाया, फिर काटा, फिर गया, फिर उठाया, फिर काटा, फिर गिर गया, तो हाथ नीला पड़ गया। पॉइजन फैलना शुरू हो गया। दूसरे एक महात्मा ने कहा काहे दिमाग खराब कर रहा है, तो इसका कहा तो काम काटना है, काट काट के तेरे को मार देगा, इसको मरने दे, क्या जरूरत है इसको बचाने की। तो महात्मा जी कहते हैं देखो भाई ऐसा है, बिच्छू का स्वभाव है काटना, वो अपना स्वभाव मर रहा है फिर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, और मेरा स्वभाव तो रक्षा करना है, मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं। तो अगर हमारा स्वभाव विनम्रता है तो स्थिति अगर प्रतिकूल भी आती है, अनफेवरेबल भी आती है, तब भी हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना है, हमें भगवान की पूजा अर्चना चैलेंजिंग स्पिरिट में नहीं करनी है कि मैं तो जो है 5 साल से पूजा कर रहा हूं, मैं टूटे मकान में रह रहा हूं, मुझे हमने नया मकान नहीं दिया आपने, मेरा तो मकान ही बढ़िया नहीं बनाया, उसी टूटे मकान में रह रहा हूं मैं आपकी पूजा नहीं करूंगा। नो, भगवान की पूजा अर्चना जो करनी है उसमें कहीं भी किसी प्रकार का कुछ चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल एकदम आपके अंदर श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। भक्ति की पहली सीढ़ी क्या है? श्रद्धा। आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है। एक व्यक्ति जो है सामने मंदिर में जाता है भगवान के पास और एक मिठाई का डिब्बा ले जाता है, उसके मन के अंदर यह है कि मेरे मकान में एक मंजिल और बनने के लायक पैसा आ जाए, तो भगवान से यही प्रार्थना करता है, भगवान थोड़ा लक्ष्मी दो ना, थोड़ा पैसा दो ना, मैं एक मंजिल और बना लूं, नीचे वाला मकान बड़ा तंग है, छोटा मकान है, जरा कोई बात नहीं जच रही वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसके मन के अंदर जो भाव है वो भगवान के प्रति है कि पैसे के प्रति है, किसके प्रति है? उसने अपना मन जो है भगवान को दिया है कि पैसे को दिया हुआ है? भगवान कहते हैं मन मना भगवत भक्त, मन मना मतलब अपना मन मुझे दे दो, अनन्य चेता, तेरे चिंतन में, तेरे मन में, तेरे स्मरण में मेरे सिवाय और कोई होना नहीं चाहिए। और यहां पे क्या है? वो कामना है जिस कामना को लेके हम भगवान के सामने गए हैं, वो कामना हमारे मन में है, भगवान हमारे मन में नहीं है। और समस्या क्या आती है कि आप भगवान के पास गए, भगवान के सामने खड़े हुए, आंखें बंद करी, भगवान के प्रार्थना चल रही है, आंखें खोली तो पट बंद हो गए, दर्शन हुए ही नहीं। जब तक आंखें खोली तब तक पट बंद हो गए, बोले वो क्या हुआ कि बस एक झलक पाई थी भगवान की, दर्शन तो ढंग से किए ही नहीं, पट बंद है, ये स्थिति है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि आपको भक्ति, अत्यंत भक्ति, भक्ति के पहले शब्द इस्तेमाल किया अत्यंत, मतलब प्रेममयी सेवा में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं। अत्यंत मीन्स अत्यधिक, बहुत ही ज्यादा प्रेम होना चाहिए। कितना प्रेम? कैसा प्रेम होना चाहिए? किस तरह का प्रेम होना चाहिए? किस तरह का प्रेम होना चाहिए? एक बड़ी पुरानी कहानी है, हमने पढ़ी बचपन से लेके अभी तक, फिल्म भी बनी उसके ऊपर, कि प्रेमी जो है प्रेमिका की तलाश में रेगिस्तान में घूम रहा। एक मुल्ला जी नमाज पढ़ रहे हैं, उनके आगे से 2-3 बार निकल गए। नमाज पढ़ने के बाद मुल्ला जी ने उसको पकड़ा, उसको बुलाया, बोले तेरे को शर्म नहीं आती, तूने गुनाह किया है कि नमाजी के आगे से नमाज पढ़ते हुए बार बार उसको डिस्टर्ब करना, बार बार उसके आगे से निकल जाना, ये ठीक नहीं है। तो उसने क्षमा याचना कर ली, आई एम सॉरी, बार बार क्षमा याचना करी, अच्छा जा तुझे माफ़ किया, आगे से ध्यान रखियो। उसने कहा मेरा एक प्रश्न है, अगर आप बुरा ना माने, गुस्ताखी माफ हो, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। बोले करो। बोले मैं अपनी प्रेमिका के प्रेम में पागल था, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, मुझे आप नहीं दिखाई दिए, इतनी समझ मुझ में है कि नमाजी के आगे से नमाज पढ़ते नहीं निकलना चाहिए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, मैं आपके सामने से निकल गया, 3-4 बार मैंने आपको क्रॉस किया, क्योंकि मुझे अपनी प्रेमिका ही दिखाई दे रही थी और कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर आप तो भगवान के प्रेम में थे तो आपको मैं कैसे दिखाई देगा? मेरे चिंतन में, मेरी चेतना में उस वक्त मेरी प्रेमिका थी और कोई नहीं था, तो मुझे आप नहीं दिखाई दिए, आपके चिंतन में तो भगवान थे, तो आपको मैं कैसे दिखाई दे गया? तो लेवल वो लेके आना है जहां आपका चिंतन ऐसा हो कि भगवान के सिवाय और कोई समझ ही ना आए, और कोई दिखाई ना दे, और किसी का स्मरण ही ना हो, और किसी का चिंतन ही ना हो, वो लेवल अभी नहीं है, तो यहाँ यही गाइड किया जा रहा है कि आप जो है भगवान तथा लक्ष्मी की स्तुति करें। अब आप स्तुति करने के बाद फिर बोला जा रहा है यज्ञावशेष को सोंकर विष्णु तथा लक्ष्मी की पुनः पूजा करें। जो आपने पूजा अर्चना के अंदर भगवान को अर्पित किया है, जैसे फूल अर्पित करते हैं, तो फूलों को सूंघने के बाद फिर दोबारा से एक बार पूजा करी जाए, इसकी दोबारा इसे रीस्टार्ट किया जाए। और उसके बाद कह रहे हैं पत्नी अपने पति को परमेश्वर का प्रतिनिधि मानकर उसे प्रसाद देकर शुद्ध भक्ति से उसकी पूजा करें। पति भी अपनी पत्नी को परम प्रबोधित होकर अपने परिवार के कार्यों को स्वयं करें। मतलब प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में उपयुक्त विधि से पति तथा पत्नी के पारिवारिक संबंध स्थापित होने चाहिए। आपको भक्ति इस प्रकार करनी है कि उस भक्ति से आपका परिवार के अंदर संबंध जो है दृढ़ हो। जब हम धर्म पत्नी का नाम लेते हैं तो पत्नी जो है धर्म परायण है, अर्थात धर्म के मार्ग पर पति को चलने में सहयोग देती है, उसकी हेल्प करती है, उसको अधर्म के मार्ग पे नहीं लगाती। उसका जो है 100% पति का और पत्नी का आपस का जो संबंध है वो इस पर डिपेंड करता है कि पत्नी जो है पति को धर्म के मार्ग पे चलने के लिए सहयोग दे। इसीलिए धर्म पत्नी कहलाती है। और यहां जो है कह रहे हैं पति पत्नी दोनों में से कोई एक पति को कर सकता है। अब पुंसवन व्रत जो है पति करेगा कि पत्नी करेगी, यहां किस भक्ति की चर्चा हो रही है? पुंसवन व्रत की इस श्लोक के अंदर जो ये कहा जा रहा है कि इस भक्ति को कर सकता है, इस भक्ति का मतलब है भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मी की पूजा अर्चना कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, कोई भी कर सकता है। साधारण भाषा में हम जब मंदिर में आते हैं, घर में ठाकुर जी को स्थापित करते हैं, छवि स्थापित करते हैं, किसी भी तरीके से जो पूजा करते हैं वो दोनों में से कोई भी कर सकता है। उनके मधुर संबंधों के कारण दोनों को फल मिलता है। और अगर दोनों जो हैं वो तलाक के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और दोनों खड़े होकर पूजा कर रहे हैं तो फल मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? भगवान ने क्लियर कट आदेश दिया है कि गृहस्थ आश्रम के अंदर पति और पत्नी दोनों को मिलके धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। और आप जो है तलाक लेने की स्थिति में है, अधर्म का मार्ग अपनाए हुए हैं, तो भगवान के आदेश का सरासर उल्लंघन है। आप भगवान के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। जब भगवान के आदेश को नहीं मान रहे हैं तो आपकी चेतना शुद्ध नहीं है, तो क्या भगवान आपकी पूजा, आपकी सेवा, आपकी अर्चना को स्वीकार करेंगे? स्वीकृति कब होती है? स्वीकृति होती है जब आप शुद्ध चेतना के साथ भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। चेतना तो आपकी शुद्ध है नहीं, तो भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? इसीलिए जो है यहां कहा जा रहा है कि उनके मधुर संबंधों के कारण दोनों को फल मिलता है। कि आपका जो पति पत्नी का संबंध है धर्म परायण होना चाहिए, धर्म के मार्ग पे होना चाहिए, प्रेममय होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। अगर वो संबंध मधुर नहीं है तो फल की प्राप्ति नहीं होने वाली। और बाद में कहते हैं प्रभुपाद जी, अतः यदि पत्नी इस व्रत को करने में असमर्थ हो तो पति इसे सावधानी से करे। अर्थात घर की पूजा अर्चना, ठाकुर जी की सेवा वो पति भी कर सकता है अगर पत्नी न कर पाए, क्योंकि पति जो है उसकी अर्धांगिनी है पत्नी। जो आधा अंग है उसको आधा फल तो मिलना ही। तो जो भी कार्य जो है पति करेगा भगवान की पूजा अर्चना सेवा के अंदर, उसका आधा फल जो है वो पत्नी को ऑटोमेटिकली प्राप्त है। पर यहां भी एक चक्कर है, पत्नी बैठी है क्लब में, अब पति कर रहा है पूजा, कहती ठीक है ठीक है, आपका आधा तो मुझे मिल ही जाना है, मैं रोज क्लब जाया करूंगी, आप रोज मंदिर जाया करो। चलो फार्मूला फिट कर लिया। आप रोज जो है मंदिर जाया करो, सेवा किया करो, पूजा अर्चना किया करो, मैं रोज क्लब जाया करूंगी, किटी पार्टी जाया करूंगी, खूब अपना खाऊं पीऊंगी, मजे करूंगी, क्योंकि आधा फल तो मुझे मिल ही जाना है। उसमें एक कंडीशन अप्लाई करी है यहां पर, ध्यान से पढ़िएगा कि यदि पत्नी इस व्रत को करने में असमर्थ हो, भाव है करने का, भाव क्लब का नहीं है, भाव एंजॉयमेंट का नहीं है, भाव भौतिक तृप्ति का नहीं है, भौतिक आनंद का नहीं है, भाव क्या है कि मैं भगवान की सेवा करना चाहती हूं, परंतु किसी हेल्थ प्रॉब्लम से, किसी और कारणवश मैं इसको करने में असमर्थ हूं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू। भाव भगवान के प्रति है, भाव भौतिक आनंद के प्रति नहीं है। उस कंडीशन के अंदर, क्योंकि अभी भी वो असमर्थ होते हुए भी धर्म पत्नी है, पति को धर्म के मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करती है, हेल्प करती है, उस स्थिति में भी जिस स्थिति में वो रह रही है। स्त्री का धर्म क्या है, महाभारत पढ़िएगा, शांति पर्व के अंदर जो है शिवजी जो है पार्वती जी से पूछ रहे हैं, कहते हैं कि तुम स्त्री हो, बड़ी महान स्त्री हो, तुम मुझे जो है स्त्री का धर्म क्या होता है इसकी व्याख्या करो। बहुत लंबी चर्चा है, टू पेज, बहुत लंबी चर्चा, चार कॉलम है, एक पेज में दो कॉलम है, दो फुल साइज पेज है महाभारत में, वो पढ़िए। उसमें एक बड़ी सिंपल बात कही गई है कि पत्नी का धर्म है पति के लिए प्रत्येक प्रकार का भक्ति पूर्वक कार्य करने के लिए तैयार रहे। पति के प्रति कभी गुस्सा नहीं करे, कभी क्रोध नहीं करे, हमेशा प्रेम से मिले, मुस्कुरा के मिले, और हमेशा जो है वो पति अगर बीमार हो जाता है, तकलीफ हो जाता है, विकलांग हो जाता है, अपंग हो जाता है, तब भी पत्नी के धर्म से चूके नहीं, उसके मन के अंदर भगवान के बाद दूसरा व्यक्ति जो है पति होना चाहिए और कोई नहीं, अर्थात उसमें व्याभिचार नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। ही शुड बी टोटली, ही कहा, परमेश्वर को प्रतिनिधि मानकर, पति को परमेश्वर का प्रतिनिधि मानकर। बहुत सुंदर व्याख्या दी हुई है, बहुत लंबी व्याख्या है कि स्त्री के धर्म क्या है, स्त्री को जो है अपने पति को किस प्रकार से स्वीकार करना चाहिए, किस तरह का जो है उसका पति के प्रति व्यवहार होना चाहिए, किस तरह से उसको जो है पति की सेवा करनी चाहिए। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान होता है कि आज्ञाकारिणी पत्नी, आज्ञाकारिणी पत्नी जो है उसका भी एक अर्थ है कि आज्ञा जो है कृष्ण के, भगवान के भाव में होनी चाहिए, भौतिक संसार के भाव में नहीं होनी चाहिए। अगर धर्म परायण पत्नी है तो उसके लिए पति का भी कर्तव्य है कि पत्नी के प्रति जो भी आदेश दे, पति के, पत्नी के प्रति जो भी कार्य करे, पत्नी को जिस कार्य करने के लिए भी प्रेरित करे, वो धर्म के मार्ग का होना चाहिए, अधर्म का कार्य नहीं होना चाहिए, तभी आप जो है धर्म से उसके पति कहलाएंगे। दंपति, दंपति का अर्थ क्या है, दम क्या है, दम है सेंसेस कंट्रोल, मन का कंट्रोल, इंद्रियों का कंट्रोल। पति जो है, पति पत्नी दोनों के अंदर इंद्रियों का और मन का पूरा कंट्रोल होना चाहिए, अर्थात धर्म का मार्ग होना चाहिए, अधर्म का मार्ग नहीं। जब अधर्म का मार्ग होगा तो कैसा होगा, दशानन, दशानन कौन थे, दशानन क्यों कहा गया, एक्चुअल जो वर्ड है वो है दशानंद, कि दसों इंद्रियों से भौतिक संसार का आनंद लेते थे। परंतु यहां पर क्या है कि यहां जब धर्म के मार्ग में चलेंगे तो आपको भौतिक संसार का आनंद नहीं चाहिए। अब दसों इंद्रियों से अगर भौतिक संसार का आनंद लेंगे तो अधर्म का मार्ग हो जाएगा। हम जब चार नियमों की चर्चा करते हैं, कहते हैं जो व्यक्ति चार नियमों का पालन करता है वो कृष्ण भावना भावित है, अर्थात धर्म के मार्ग पे। धर्म क्या है, साधारण भाषा में कहें तो धर्म क्या है, धारण करने योग्य अर्थात करने योग्य कार्य, तो जीव के लिए करने योग्य कार्य क्या है? What should a जीवा डू? उसके लिए धर्म क्या है? जीव का कर्तव्य का है, करने योग्य कार्य जो है, जो जीव का कर्तव्य है वो है कि अपना भूला हुआ संबंध भगवान से पुनः स्थापित करना, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। जब तक आप जो है अपना साक्षात्कार नहीं करके, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में नहीं चलते हो, उसके अनुसार कार्य नहीं करते हो, तो आप धर्म के मार्ग पर आरूढ़ नहीं हो। और चार नियमों का ब्रेक करते हो, चार नियमों का पालन नहीं करते हो, तो आप धर्मी हो या धर्मी हो? आप कृष्ण भावना भावित हो कि कृष्ण भावना अभावित हो? इसलिए जो है जब धर्म का मार्ग की बात आती है, तो धर्म के मार्ग के अंदर जो है पति और पत्नी का जो संबंध है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि पत्नी आज्ञाकारिणी होनी चाहिए। पर आज्ञा किसके प्रति? धर्म के प्रति। आज्ञा किसके प्रति? कृष्ण के भाव के प्रति। आज्ञा कैसी होनी चाहिए? कृष्ण भावना भावित होनी चाहिए। आज्ञा जो है भौतिक संसार का आनंद भोगने की नहीं होनी चाहिए, दसों इंद्रियों से आनंद लेने की नहीं होनी चाहिए, अधर्म के मार्ग की नहीं होनी चाहिए। उस आज्ञाकारिणी पत्नी जो है उसको भी इसका फल मिलेगा, क्योंकि वो भी कृष्ण के भाव में है, मजबूर है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, कोई दिक्कतें हैं जिसकी वजह से भगवान की सेवा नहीं कर पा रही है, तो सेवा पति ने करी है, तो पति के द्वारा की हुई सेवा का भी उसको आधा फल प्राप्त होता है। परंतु भक्ति एक ऐसी आनंदमय चीज़ है कि जब व्यक्ति को इसकी लत लग जाती है, इसका नशा आ जाता है, तो फिर वो इसके बिना रह नहीं पाता। उसको भौतिक संसार की वस्तुएं फिर आकर्षित नहीं करती। उसका मन जो है जब कृष्ण के चरणों में लग गया, उसको उसके सिवाय और कुछ सूझता नहीं, उसी के प्रति जो है आनंदित होता है। यहाँ पर जो है ये पुंस व्रत की चर्चा चल रही है, इतना डिफिकल्ट व्रत बताया जा रहा है कि इस व्रत में कहीं ना कहीं दिति को फेल होना है, कहीं ना कहीं। और क्या फेलियर हुआ अल्टीमेटली, रिजल्ट में क्या फेलियर हुआ, कैसे फेल हुई हो? उसमें कहते हैं कि आपको चरणों को धोए बगैर बिस्तर पे नहीं जाना चाहिए, ये चरणों की गंदगी जो है वो आपके बिस्तर पे नहीं आनी चाहिए। तो सोने से पहले, बिस्तर पे जाने से पहले आपको चरण धोने चाहिए। और उसने दो गलतियां करी, एक तो चरण धोए नहीं और बिस्तर पे थक गई होगी थोड़ा, चलो 10 मिनट आराम कर लेती हूँ, अभी सोती नहीं हूँ, जब सोऊंगी उसके पहले चरण धो लूंगी, ऐसे मन में भाव रहा होगा। परंतु निद्रा देवी जो है इतनी तेज थी, उन्हें आकृष्ट किया और वो बिना चरण धोए बिस्तर में बैठी, लेटी और सो गई। अब इंद्र को मौका मिल गया उनके गर्भ में प्रवेश करने का, उसने गर्भ के 7 खंड किए, 7ों खंडों ने रोना शुरू कर दिया, तो बोला मारो दी, मत रो। जब देखा नहीं मान रहे हैं, रोए जा रहे हैं, मेरा मारो दी बार बार कहने का लाभ नहीं हो रहा है, उसने हर खंड के 7 हिस्से फिर कर दिए, तो 49 खंड बना दिए। रोना नहीं रुका, 49 जो पैदा हुए मारोदी कहने के कारण उनको कहा गया मारुत। तो ये मारुतों की जो है जन्म लेने की व्यवस्था हो गई, जो कि इंद्र को सपोर्ट करते थे, मारते नहीं थे, क्योंकि देवता का श्रेणी पा गए। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की।